घर में अश्री बाप के साथ कंबाइंड हो जाओ। स्व माना हाँ जी, स्वयं माना आत्मा। आत्मा का राज्य किस पर? आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, कौन कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। और फिर मन का कंट्रोल, मन का कनेक्शन किससे रहता है? शरीर की पांचों कर्मेंद्रियों पर है ना, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। सारे शरीर पे त्वचा है ना, जिसमें हम सेंस करते हैं। इवन मुख के अंदर भी त्वचा है, पूरे खाने की नाली में भी त्वचा है, सांस की नाली में भी त्वचा है ना? अंदर की जो स्किन है ना, म्यूकोजा जिसे कहते हैं, वो भी सेंस करता है ना। हमारी जो सांस की नाली अंदर सेंस करती है, ऑक्सीजन को अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ना, सेंस करते ही नहीं करती। पेट में भी क्या सेंस होता है, कौन सा खाना पहले तो पचाना है उसको, फिर कितना उसमें से एब्जॉर्ब करना है। ऐसे तो कितना मर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितने रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एब्जॉर्ब होता है ना। तो इन पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे सेंसरी मतलब ये बाहरी समाज से, हम बाहरी दुनिया से इनको जोड़ते हैं और रिएक्शन भी इनके द्वारा करते हैं अधिकतर। आंखों के द्वारा भी हम रिसीव भी करते हैं और देते भी हैं, मुख कानों के द्वारा सुनते हैं ना, और मुख के द्वारा खाते हैं बोलते भी, कान नाक के द्वारा सुनते हैं। पर किंतु उससे काफी और भी कार्य इनके होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों पर आत्मा का राज्य हो और पांचों कर्मेंद्रियों पर भी आत्मा का राज्य हो। और फिर ऐसे उनको ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं पांचों को, और बाकी तो कर्मेंद्रियां हैं फिर हमारे, हाथ पैर हैं और अंग हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर डिफरेंट वो कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। तो आत्मा किसी चीज का किसी पर राज्य कब हो सकता है? कब हो सकता है? आत्मा के पास सात एनर्जी है ना, कौन कौन सी? पहले तो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। सत्य की समझ है आत्मा के पास कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे उससे क्या संबंध है। और चौथे समझ कौन सी है? इस संसार रूपी नाटक में कर्म का क्या महत्व है ना? मुझे इस समय यह तकलीफ है, प्रॉब्लम है देह में, संबंधों में परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आज समाज में क्या क्या हो रहा है, कितना पोल्यूशन, गर्मी, मौसम, कभी ठंडी कभी बरसात, ये सब हमें फेस करनी पड़ती है ना। तो ये सब क्यों होता है, कर्मों का हिसाब किताब क्या है? तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ, कर्मों की समझ, कर्म अक्रम विक्रम की समझ, ये भी आत्मा के पास इन्नेट है। इन्नेट माना अंदर होती है ना, क्योंकि परमात्माएं, जब सतो प्रधान शब्द का मतलब क्या है, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा सत्युग में है तो आत्मा कैसी है? सातो एनर्जी में भरपूर है, राइट, फुल है। सोलह कला का मतलब क्या है? 100% है ना, सोलह कला का मतलब 100%, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा की बैटरी कमजोर होती जाती, हम जन्म लेते जाते आत्मा की बैटरी कमजोर होती, त्रेता युग आता, आत्मा की बैटरी 75% रह जाती है ना, से हम 14 कला कह देते। और फिर धीरे धीरे और आत्मा की बैटरी तेजी से कम होती तो हम आते आते और 1250 वर्ष बीतते द्वापर आता, तो हम आत्मा कला कितनी हो जाती? 8 कला हो जाती, राइट, 50% से कम एनर्जी हो जाती। और फिर धीरे 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 आत्मा की बैटरी जैसे से हम, क्योंकि जब जैसे 50% से कम एनर्जी होती, सत्युग त्रेता में आत्मा क्या है? स्वराज्य अधिकारी है। स्व माना आत्मा, आत्मा का राज्य है किस पर? मन, बुद्धि, संस्कार पर, राइट। क्योंकि आत्मा के पास जो सातों एनर्जी है भरपूर है, तो बुद्धि भी, आत्मा बुद्धि को सैलरी देते ना, सैलरी होती क्या बोलते हैं, तनख्वाह कहते हैं ना, मासिक आय कहते हैं ना, तो आत्मा सातों एनर्जी से खुद भरपूर है तो बुद्धि भी भरपूर है ना, उसको भी भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर है बुद्धि, मन भी भरपूर है सातों एनर्जी से, और संस्कार भी सत्व प्रधान है, बुद्धि भी सत्व प्रधान है, मन भी सत्व प्रधान, और संस्कार माना आदतें, भी सत्व प्रधान है और आंखें भी सातों एनर्जी से भरपूर है। ज्ञान आंखों में समझ है सामने वाला कौन है, मैं कौन हूं, मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, हम एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, ये अंदर समझ है, उस समझ से आत्मा देख रही है, मैं आत्मा भी पवित्र ये आत्मा भी पवित्र, मैं भी शांत ये भी शांत। शांति माना वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट है ना, ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता, पास्ट का फुल स्टॉप और स्वयं में अपने स्वचिंतन में टिकी हुई आत्मा, वर्तमान में टिकी हुई आत्मा, ना भविष्य की चिंता ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में टिके रहना, राइट शांति से भरपूर है। आंखों में भी शांति है, आंखों में क्या है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का अर्थ क्या है, कौन बताएगा, प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम का अर्थ है एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। प्रेम का अर्थ क्या है, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, सामने वाला व्यक्ति जो है जैसा है मुझे स्वीकार है। परमात्मा का प्यार कैसा है, हमारा प्यार कैसा है, परमात्मा का प्यार है अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। परमात्मा का प्यार कैसा है, इस विश्व में हर आत्मा को दिल से सम्मान के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करना, उसके रोल के साथ, हर रोल के साथ, और फिर उनकी बराबर सभी की बराबर पालना करना, ये ऐसा है परमात्मा का प्यार। इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे प्यार का सागर। नहीं, कैसा भी आत्मा हो, चाहे वो वर्ल्ड में महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, आतंकवादी हो और डाकू हो, है ना, कुछ भी हो, किंतु परमात्मा क्या करता है, कोई भी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी ड्रामा का वो क्या है, क्रिएटर डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर भी है ना। अगर कोई फिल्म है उसमें हीरो है हीरोइन है, मान लीजिए शोले फिल्म है ना, उसमें कौन कौन है, दो हीरो हैं या दो तीन हीरो हैं, एक विलन भी है, ये नहीं है, और भी एक्टर्स हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या करता है, वो सबको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, सबके लिए जो भी देना होता है उसकी उसका जो भी क्या कहते हैं उसकी जो इनकम जो देता है उसको जैसे सबको देता नहीं देता, कि विलन को नहीं देता है, विलन को नहीं देता। मान लो गब्बर सिंह बैठा हो और वो कौन कौन थे, वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बैठे हो, संजीव कुमार बैठा है, तो चाय मंगाएगा तो किसके लिए मंगाएगा, सिर्फ संजीव कुमार के लिए और धर्मेंद्र और हेमा इसके लिए, गब्बर सिंह के लिए नहीं मंगाएगा, नहीं मंगाएगा, सभी के लिए। तो जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे होता है ना, वही स्क्रिप्ट राइटर है, वही म्यूजिक डायरेक्टर है, वही डायलॉग राइटर है ना, वो जो है सबको बराबर पालना दे रहा है, सबको बराबर, किसी का रोल देख करके नहीं, इसका रोल कैसा है, सबको बराबर पालना देता है, ऐसा ही परमात्मा है। और हम उसके बच्चे, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं ये तो डाकू है, ये तो आतंकवादी है, ये तो है, भगवान उनका हवा पानी बंद करता है क्या, उनकी बुद्धि को चाहे तो उनकी बुद्धि को शटअप कर देना बिल्कुल नहीं, अगर आतंकवादी की बुद्धि काम ना करे तो क्या कर सकता है, कोई चोर है डाकू उसकी बुद्धि काम ना करे तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, पर उनकी बुद्धि बकायदा लगन से जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, वो भी भगवान को बोलते हैं जाने के से पहले किसी भी रूप में चाहे बोलते हैं, हे भगवान हमारी मदद करना, आज मैं जा रहा हूं बॉम्ब बांध के और आज मेरा सक्सेसफुल होना चाहिए मिशन, है सुसाइड मिशन है ना, सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, नहीं होते, क्योंकि तो हमारा प्यार कैसा हो जाता है, हमारा प्यार जजमेंटल हो जाता है, इसलिए हार्ट की बीमारी होती है ना, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती, इसको मैंने इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको मैं देख नहीं सकता, इसके बगैर रह नहीं सकता। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार नहीं, नहीं भगवान का ऐसा प्यार, ये सत्यों की निशानी है। वैरायटी पार्ट तो वहां भी है, नेगेटिव पार्ट नहीं है, है पॉजिटिव पार्ट, किंतु वैरायटी तो है। सब सब एक जैसे भाव संस्कार वाले, सब एक जैसी आत्मा है क्या? वहां पर राजा भी है, रानी भी है, सभी हैं, प्रजा भी है, नौकर चाकर दास दासियां भी हैं, पर सबके साथ बेशुमार प्यार, 100% एक्सेप्टेंस है। नहीं? अब बाबा के बच्चे कितने सारे, कितने तरह के आते हैं, सब तरह के। किंतु दादियों का प्यार कैसा था? अभी भी दादी है, अभी दादी तो अभी भी बची है, किंतु दादियों का प्यार कैसा है, कैसा था? बड़ी बहनें बता सकती हैं, कुछ भाई भी जो पुराने होंगे बता सकते हैं, कैसा प्यार था? सबके लिए, सबके लिए बराबर। नहीं, अभी भी सबके लिए बराबर है ना, जो भी आते हो, जैसे भी आते हो, जहां से भी आते हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी भाषा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए बराबर है ना? नहीं, नहीं। तो वो ऐसा प्यार, वो प्यार में भरपूरता, वो शांति वर्तमान में रहना। शांति माने दादियों, दादियों में देखा तो, दादियों को देखो तो वर्तमान में दादियां, जैसे जैसे अभी अभी कोई बात हुई ना, दादी कोई भाई आया शांतिवन डिपार्टमेंट से या मधुबन पांडव भवन में, किसी कुछ प्रॉब्लम है, वो कोई बात हुई, इसका कोई इशू था, कोई बात डिस्कस हो गई, सब आउट हो गया, और फिर दादी के पास थोड़ी देर में भाई दोबारा आया, इतने प्यार से दादी मिलकर टोली दे रही है उसको, बात में कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पास का जो कुछ हुआ कोई मतलब ही नहीं है ना, प्यार से दृष्टि दे रही है, प्यार से बात कर रही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे 5 मिनट पहले ही बात हुई थी, तो 5 मिनट बाद पास का चिंतन ही नहीं है, भविष्य में क्या, वर्तमान में बस आत्मा आत्मा को एक्सेप्ट करते हुए प्यार से शांति, ये वर्तमान शांति है प्यार, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। और खुशी क्या है, खुशी क्या है, संतुष्टता है ना, कंटेंटमेंट, जो मिला जितना मिला। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण क्या है, संतुष्टता। आनंद क्या है, आनंद किसे कहते हैं बताओ, कौन बताओ, बताओ ना, शर्माओ नहीं, मैं क्लास नहीं कराने बैठा, मैं तो ऐसे आपसे बात करने के लिए बैठा। आनंद किसे कहते हैं, क्या कह रहे, आनंद मीन्स, आन मीन्स बंधन, हिंदी में शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद करो ना, आनंद, आन मीन्स बंधन, आन कहते हैं आन है इस बात की, बंधन, और अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त अवस्था। आत्मा इस देह और देह की दुनिया से बंधन मुक्त हो गई है, गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड चली गई, ना देह का बंधन है, ना देह के संबंध का बंधन है, ना देह के पदार्थों का बंधन है, ना देह भान के स्वभाव संस्कार का बंधन। आत्मा एकदम इस अटैच होके अपने पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की के में लवलीन है, उनकी याद में लवलीन है, उनकी गोद में लवलीन है, लवलीन स्थिति, बियॉन्ड एक्सटेसी, राइट, हाँ जी, विदाउट, यस, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। आत्मा इस देव और देव खींचने, कुछ खींचने वाली रस्सी नहीं नीचे, लवली अवस्था। क्योंकि जब भी हम याद करते हैं ना भगवान को, बाबा की याद में बैठते, तो उन इन शांति शब्द नहीं बोलो, शांति में टिक जाओ, अर्थ का पता हो तभी तो टिकेंगे। प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम से क्या मतलब है, प्रेम का खुशी का मतलब क्या है, आनंद का मतलब क्या है, तो उन शब्दों में, तो आत्मा इन सभी गुणों के प्रैक्टिकल मूर्त है, स्वरूप है सत्य गुण। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती, तो आत्मा के पास सारे वो एनर्जी है, तो आत्मा में आंखों में भी वो एनर्जी, सातों एनर्जी है, कानों में भी, नाक में भी, मुख में भी, और रोम रोम में वो एनर्जी भरी हुई है, सतो प्रधान। धीरे धीरे एनर्जी कम होती, रजो, मतलब पहले पहले तो सतो है ना, फिर रजो जब आता तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हुई तो क्या हुआ, 50% से, जब तक कहते हैं एक कॉर्पोरेट होता है ना, कंपनी होती है ना, तो उसका MD कौन बनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, जिसके शेयर 50% से ज्यादा होते हैं, 51% है उसको, वही बनेगा है ना। शेयर 50% से कम हो गए तो क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर बदल जाएगा ना, एमडी बदल जाएगा, राइट। तो पहले एमडी कौन थी, सत्य त्रेता में आत्मा एमडी थी, और अभी क्या हुआ, 50% से कम एनर्जी हो गई। अब आत्मा राजा कौन बन गया? राजा पहले कौन था? आत्मा थी। अभी 51% शेयर, अब मन के पास प्रधानमंत्री कौन है? मन है। राजा कौन था? आत्मा। पर अब मन ने इतनी एनर्जी ले ली, अब उसका 51% शेयर हो गया, तो राजा कौन बन गया? आत्मा क्या हो गई? आत्मा कब्र दाखिल हो गई, है ना, देवभान। क्योंकि मन ने क्या एनर्जी कहां से ली? मन एनर्जी कहां से ली? पांचों कर्म इंद्रियों से ली, क्योंकि आंखों, इन पांचों कर्म इंद्रियों से कनेक्शन किसका है? मन का है। पूरे शरीर का कनेक्शन किससे है? मन का है। आत्मा के पास सात एनर्जी है, आत्मा मन से शरीर को एनर्जी देती है, सातों एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। धीरे धीरे जब आत्मा की एनर्जी कम होती चली गई, तो मन ने एनर्जी कहां से लेनी शुरू कर दी? त्रेता के अंत से ही। कहां से एनर्जी लेनी शुरू करी? आंखों से, नाक से, कान से, मुख से, रोम रोम से, है ना, और शरीर के और अंगों से जो मैसेज आ रहे थे ना, उनसे लेनी शुरू कर दी, प्रकृति से एनर्जी लेनी शुरू कर दी, राइट। तो मन जो है शक्तिशाली होता गया, आत्मा की एनर्जी कम होती गई समय के साथ, तो मन राजा बन गया और आत्मा इस देहभान के अंदर, क्योंकि सबसे पहले क्या आया? देहभान आया ना, प्रकृति का भान आया, ये सब शरीर पांच तत्वों का बना है, तो प्रकृति का भान आया, तो क्या आत्मा कब्र दाखिल हो गई, देहभान में के अंदर चली गई। तो हम अपने को आत्मा समझना ही भूल गए, राइट। आत्मा समझना भूल गए तो क्या हुआ? हम क्या कहलाए तभी? पहले देवी देवता कहलाते थे, फिर क्या कहलाने लगे? मन राजा बन गया तो क्या कहलाए? क्या कहलाए? सभी जानते हैं ऐसे तो। राजा, राजा कौन बन गया? मन। मनुष्य शब्द का मतलब क्या होता है? मन माना मन, उष्य माना वश में, मन का राज्य हो गया, मनुष्य माना मन के वश में, मन अधिकारी बन गया। स्वराज्य अधिकारी थे ना पहले, अभी कौन हो गया? मन अधिकारी बन गया, तो हम बन गए मनुष्य, राइट। समझ रहे? अब आत्मा मन का राज्य हो गया, तो अब मन के अंदर जो सारी एनर्जी लेते गए, तो मन में पहले तो देहभान आया था, देह से एनर्जी कहां से जाए? देह से। हम किससे? आंखों से पहली बार देह को देखा ना, सत्युंग त्रेता में हम देह को नहीं देखते हैं, हमारा गुणों में व्यवहार होता है, है ना। हम चेहरा देवताओं का चेहरा होता है ना, आंख, नाक, कान, मुख, उसमें जो गुण होते हैं ना, उसी में व्यवहार होता है। इसे देवताओं को मुख दिखाते हैं ना, तो वो हमारा व्यवहार उसमें होता है। और फिर जैसे ही द्वापर आता है तो क्या होता है? हमारा व्यवहार किससे हो जाता है? देह भान आ जाता है। देह भान आते ही देह की तरफ आकर्षण आता है, उसकी वजह से विकार, आकर्षण से काम विकार आया, आकर्षण हुआ ना, काम आया, फिर क्रोध आया, फिर लोभ आया, फिर मोह आया, देह भान आया, तो उससे मतलब उसके साथ साथ सबसे पहले फिर देह भान तो सत्युग में थोड़ा सा नाम मात्र होता है, किंतु सबसे पहले द्वापर के अंत में, सॉरी त्रेता के अंत में क्या आता है? देह अभिमान आता है, मेल फीमेल का भान आता है। मेल फीमेल का भान आने से आकर्षण होती है, और उसकी वजह से फिर ये काम विकार आता है, और उसकी जो देह भान आने से जब काम विकार आता है, देह की आकर्षण हुई, उससे फिर देह के संबंध संपर्क का भान आता है, फिर देह के पदार्थों का भान आता है कि मुझे चाहिए इनसिक्योरिटी, क्योंकि उस समय थोड़ी चीजें कम हो जाती हैं, विनाश मिनी विनाश होता है देह के, और क्या आता है? देह के पदार्थों का भान, चीजों की स्केर्सिटी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो देह के संबंध, देह के पदार्थों का भान, तो देह के संबंध संपर्क के भान से मोह आ गया, और देह के पदार्थों के भान से लोभ आ गया, और देह भान के स्वभाव संस्कार, और इनको बचाने के लिए क्या आ गया? क्रोध, राइट। और फिर जो जितना इकट्ठा हो गया उसका अहंकार हो गया, पांच विकार है ना, देह भान के स्वभाव बन गया ये पांच विकार, है ना, और देह भान के संस्कार क्या बन गए? एनर्जी कम होती गई तो क्या बन गया? आलस्य आने लगा, तेजी से एनर्जी जलने लगी। एनर्जी का मतलब क्या है? ज्ञान कम होता चला गया, और बिल्कुल पवित्रता एकदम कम होती चली गई, शांति एकदम। एनर्जी जलने का मतलब क्या है? ज्ञान की बजाय ज्ञान आता गया, देह अभिमान आया, और देह बनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया, और उसकी वजह से एनर्जी जलने लगी, तो आलस, लेजीनेस आने लगी, और क्या लगेगा? अलबेलापन, केयरलेस होने लगे, और फिर एक निशानी, सबसे बड़ी निशानी जो हम ब्राह्मणों को चेक करने चाहिए वो क्या है? दूसरों के दोष दिखाई देना, दोष दर्शन। अगर मुझे को दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर देह अभिमान है, राइट? अगर मेरे अंदर आलस्य है, ये निशानी है, देह अभिमान है। अलबेलापन है, केयरलेस है, देह अभिमान है। ब्राह्मण चेकिंग कैसे करेंगे, कमी कमजोरी कैसे चेक करेंगे? ये कमी है, आलस्य है। नहीं छोड़ो ना, अभी रात को नींद नहीं आई, थोड़ा सा चलो 4:30 उठते हैं, 4:15 उठते हैं, कोई बात नहीं।
आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज, तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। आत्मा सुन लो मेरी आवाज, सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होने लगी तो क्या होने लगा? आलस्य आया, अलबेलापन आया, क्योंकि हम अपने आप को देव समझ करके व्यवहार करने लगे, मतलब मेल फीमेल होकर समझ के व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे रोल कॉन्शियसनेस आई, देव विमान माना एक्चुअली रोल कॉन्शियसनेस, देव विमान माना बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। इंग्लिश में कई बार चीज अच्छी समझ आती है हिंदी की बजाय, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार इंग्लिश में हमें ट्रेन समझ अच्छा आता है, किंतु हिंदी में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। लोपत, फिर आवत, क्या क्या नाम है पता नहीं उसको, क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल शब्द है ना। तो इंग्लिश कई बार हिंदी लगती है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे आलस्य, अलबेलापन, फिर सिनिसिज्म इज फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों के अवगुण दिखाई देना शुरू हो जाना। अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक लड़का और एक लड़की है, अगर उनका आपस में प्यार होता है दुनिया में, अब की दुनिया में भी, तो क्या दिखाई देता है? वो लड़का उस लड़की को वही लड़का पसंद आता है, कि ये लड़का सबसे अच्छा है, और लड़की को वही लड़की पसंद आती है ना। उसके पहले क्या कहते हैं दूसरे को? गुण दिखाई देते हैं, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है ना। वो एक पूछो ना किसी से, वो माता पिता पूछते हैं इसमें क्या विशेषता है, क्या बात है, तुम उसके पीछे क्यों जाते हो? नहीं नहीं मैं तो इसी से शादी करूँ। क्यों? उसमें ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है। उनकी शादी कर दो, 3 महीने के बाद पूछो क्या होगा, है ना। आप 3 महीने पूछ कितने गुण है भाई उसमें, वो क्या बताएगा? गुण नहीं बताएगा एक भी, अवगुण या गुण बताएगा। लड़की भी क्या कहे? इसमें यह गुण है। आपस में भी क्या कहेंगे? तुम्हारी ये बात ही बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको सहन नहीं कर सकती हूं, आप इस अपनी आदत बदल लो। क्योंकि देह अभिमान आ गया ना, उसके पहले देह अभिमान नहीं था, देहभान था किंतु देह अभिमान नहीं था। तो देह अभिमान आते ही समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे? तो ये सूक्ष्मता, ये अगर ये कमी है दूसरों के अवगुण दिखाई। हंस क्या करता है? हंस और बगले में क्या फर्क? दोनों सफेद हैं। हम क्या बने? पहले क्या थे? हम बगले, है ना। अभी क्या बन रहे? हंस। क्योंकि भले एक सामने सामने 95 कीड़े पड़े हुए हैं ना, और उसमें कहीं बीच में 5 मोती पड़े हुए हैं, 2 मोती पड़े हुए, एक ही मोती पड़ा हुआ। बाबा ने दूसरे मुरली में कहा ना, 36 में से 36 गुण होते हैं दैवी गुण, एक सिर्फ एक गुण है उसके अंदर। तो बाबा को 35 अवगुण दिखाई नहीं देते, एक गुण दिखाई देता बच्चों को, थी ना अभी व्यक्ति मुरली में था ना पीछे। तो एक ही मान लो एक भी मोती पड़ा ना, तो हंस को क्या दिखाई देता है? एक मोती दिखाई देता, कीड़े दिखाई नहीं देते। और बगले को 35, अगर वहां पे 100, 99 अगर वहां मोती पड़े ना, एक भी जो कीड़ा पड़ा हुआ है, उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ कीड़ा दिखाई देता है। तो ये नजर का फर्क हो जाता है ना। देहाभिमान आया, देहभान आया, तो इसका मतलब अगर किसी में मुझे अवगुण दिखाई दे, ये मेरी कमजोरी है, अगर मुझे किसी के अंदर अवगुण दिखाई दे रहा है सामने वाले व्यक्ति में, चाहे वो मेरे लौकिक घर में हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे या कोई भी हो, दोस्त हो, या अलौकिक परिवार में भी, सोचो अगर मुझे किसी के अवगुण दिखाई देते हैं तो ये क्या है? अभी मेरा देहाभिमान खत्म नहीं हुआ है, ये कमी है, कमजोरी है। इसके कारण मेरा क्या होता है? मेरी अवस्था खराब होती है, मेरे मन में संकल्प चलते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। ब्राह्मण परिवार में एकता क्यों कम होती है, झगड़े क्यों होते हैं? इसी कारण से। और फिर हॉस्टिलिटी, माना रिवेंजफुल बिहेवियर, जिसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया, तो उसके साथ बदला लेने की भावना। और फिर सस्पिशियस, शक पैदा, संशय पैदा हो जाता है। जहां देहाभिमान आएगा संशय पैदा होगा, नहीं होता है, शक करने शुरू कर देते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं ना, सस्पिशियस हो जाते हैं और एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या होता है? देखो अलस्य अलबेला पर मैंने कहा ना, आत्मिक भान में क्या होता है? आत्मा सदा अलर्ट है, एक्यूरेट है। आप सो रहे हैं तो भी आत्मा काम कर रही, नहीं कर रही? हार्ट चल रहा है, नहीं चल रहा? या हार्ट बंद हो गया, आत्मा आप सो गए, हार्ट भी बंद हो गया, सांस चलना बंद हो गया, फेफड़े ने, पेट ने खाना पचना बंद हो गया, ऐसा है क्या? किडनी ने खून काम करना बंद कर दिया? सब कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा? आत्मा नहीं सोई है, आत्मा अलर्ट है और एक्यूरेट है। आपका हार्ट रेट ठीक चल रही है, बिल्कुल बकायदा, जैसे चलती थी कल ऐसे आज रात में भी चल रही है, सांस बकायदा बराबर चल रहा है, एक्यूरेट है, नहीं कुछ डाटा में हेरा फेरी नहीं हो गई, सोए और डाटा ऊपर से हेरा फेरी देखो तो सुबह सुबह भूली, नाम ही भूल गया बंदों का, घर के मेंबर्स आसपास अपना नाम ही भूल जाए आदमी, ऐसा होता है क्या? नहीं भूलता है, एक्यूरेट है। किंतु और देह भी माना आया तो आलस्य अलबेलापन, और दूसरा आत्मा जो है कैसी है? आत्मा गुणग्राही है, हंस है ना। आत्मिक आत्मन स्थिति कैसी है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति कैसी है? गुणग्राही है ना, गुण दर्शन है उसके अंदर, नेचर सबके गुण देखना, इसलिए सत्युग में शांति, प्यार, खुशी है, आपस में मिलनसार है, संस्कार मिलन है, क्योंकि हम व्यवहारिक गुणों में करते हैं, हमें अवगुण किसी दिखाई देते नहीं। पहली बात तो अगर होते भी नहीं, पर थोड़े डिग्री तो फर्क होता है ना, डिग्री का तो फर्क होता है। यही तो राज्य, यही तो है, एक राजा क्यों है, एक प्रजा क्यों है, एक साहूकार क्यों है, इसी लेवल के कारण तो दास दासी क्यों है, ये फर्क है ना। एक बल्ब राजा का बल्ब 1000 वाट का है और रानी का बल्ब 999 वाट का है ना, और साहू का और रॉयल फैमिली के मेंबर्स उनका धीरे धीरे कम है ना, इसे राजा है ना, उसको सबसे ज्यादा रिगार्ड है। और फिर उसके नीचे इतने जाएंगे, साहूकार का 500 वाट का बल्ब है, और फिर नीचे अपने आप में 100% है, वो 16 कला है, अपने हिसाब से 500 वाट का है पर 16 कला है। दास दासी का 100 वाट का है पर वो अपने आप में 16 कला है, संपूर्ण है राइट, पर 100 वाट का बल्ब है राइट। और नीचे चंडाल का 50 वाट का बल्ब है ना, वो भी 16 कला है, अपने हिसाब से फुल है, समझ रहे 16 कला का मतलब क्या है। और धीरे धीरे जब गिरते जाते तो 14 कला, सभी 16 कला है सत्युग में, अपने अपने हिसाब से हर आत्मा 100% है राइट। 16 कला सर्वगुण संपन्न 16 कला, और फिर संपूर्ण निर्विकारी है, देहभान का भी अंश नहीं है, ना आलस का अंश है, ना अलबेलेपन का अंश है, कोई मतलब इसमें अंश भी नहीं है। इसका अंश क्या है, काम क्रोध लोभ मोह का अंश क्या है, आलस्य अलबेलापन, दूसरों के अवगुण दिखाई देना, बदला लेने की भावना रखना, शक अनुमान राइट। तो गुण ग्राही, बदलने की भावना नहीं, रहम सब पे रहम आना है ना, दया आना सब पे, दया राइट, काइंडनेस, और फिर शक नहीं, निश्चय सब पे निश्चय है, पूरे परिवार पर, पूरे समाज पर निश्चय है राइट। और अभी क्या है, संशय है सब पर, शक है सब पर है ना, देव अभिमान का निशानी है, मुझे किसी पर शक होता है ना, विश्वास नहीं हो, शक होता है तो इसका मतलब मेरे अंदर देव अभिमान है, ये काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, अनुमान लगाना उसने ऐसा किया होगा, ये क्या है, ये भी देव अभिमान की निशानी है। सत्यम क्या, विश्वास है, निश्चय विश्वास है ना? और फिर चिंता, थोड़ी चिंता होती है ना कोई बात की, इसका मतलब अभी देव अभिमान है ना, कमी, ये कमी कमजोरी है ना, ये है देह अभिमान, ये अंश है राइट। तो ये निश्चय विश्वास, और उसके बजाय शक अनुमान, और फिर निश्चिंत, सत्य में क्या आत्मा क्या है, निश्चिंत है आत्मा, मानी सत्य निश्चिंत अवस्था है, बेफिक्र है, बेफिक्र भाषा है ना, और फिर क्या है, निर्भय है। किंतु कलयुग में देह अभिमानी अवस्था कैसी है, उसमें चिंता और भय है, अगर मुझे डर लगता है इसका मतलब क्या है, देह अभिमान है राइट। आपके सामने सांप जा रहा हो, अभी रास्ते में मारा था, एक सांप था, तो लगते ना लंबा सांप था है ना, तो अगर आपको ये डर हो सांप आ जाएगा, चूहा आ जाएगा, काकरोच आ जाएगा, तो योग लगेगा आपका, निश्चय भय नहीं, जरा भी भय नहीं ना, मैं आत्मा हूं, ये पक्का, इस स्वरूप बन गया ना, आत्मिक स्वरूप में टिक गए ना, ज्ञान स्वरूप स्थिति आ गई ना, तो भय नहीं लगेगा राइट। और फिर टाइप ए नेचर, मतलब ना प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, ये काम जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, मैं ही ठीक कर सकता हूं, जल्दीबाजी, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, जल्दीबाजी होना, इम्पेशियंस होना, ये भी क्या है, देह अभिमान की निशानी, मैं ही स्पेशल हूं राइट, मैं ही कर सकता हूं, मेरी बात सुननी चाहिए, सबको मेरी बात माननी चाहिए, मैं बड़ा हूं, ये भी क्या है, देह अभिमान की निशानी। और रियल क्या है आत्मा की निशानी, पेशेंस, धीरज, हर बात में धीरज राइट। तो ये कमी कमजोरी क्या है, वो क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी कमी कमजोरी क्या है, तो ये वाली बात राइट। और फिर क्या, ईर्षा द्वेष, अगर मुझे किसी को देख के जेलसी होती है, हेट्रिड होती है, घृणा आती है, तो ये भी क्या है, कमी कमजोरी है। तो ये अगर कमी कमजोरी, और इसका सत्युग में क्या है, आत्मा की स्थिति कैसी है, आत्मा की स्थिति में है विश्व कल्याणकारी, इच्छा द्वेष नहीं, सबके प्रति कल्याण, जो दादियों में बाबा ब्रह्मा बाबा को, तो उसके में ब्रह्मा बाबा मम्मा तो परफेक्ट रूप थे ही, कि दादियों को हमने, दादियों के समय इतना रहा हूं, परफेक्शन मतलब क्या, दादियों सबके प्रति, कोई कुछ भी कैसा भी है, बाप दादा के आपने सामने मिले होंगे, बाप दादा से बाबा का ऐसा सबके प्रति नहीं, ऐसा था नहीं था ऐसा। तो ये जो है इसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी माना, इनका अंश भी नहीं, ये सब बातों का अंश नहीं है ना। हमें क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न, 36 के 36 गुण हमारे अंदर है, हर गुण में 100% है, संपूर्ण निर्विकारी है, मतलब किसी विकार का अंश भी नहीं है, मतलब उसका मतलब देहभान का अंश भी ना हो, देहभान के किसी भी अंश का भी अंश भी ना हो, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण निर्विकारी। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि देहभान देहभिमान के कारण ही मर्यादाएं भंग होती हैं। जहां देहभान देहभिमान निकल गया तो अपने आप सब मर्यादा आ गई। मर्यादा कौन सी आ गई? सत्य की समझ आ गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया, सच्चा प्रेम आ गया, सुख अतिंद्रिय सुख आ गया, आनंद आ गया, और आठों शक्तियां आ गई। और इन सातों गुणों के मिश्रण से क्या बनते हैं? 36 दैवी गुण बनते हैं। वो दैवी गुण आ गए, सत्यता आ गई, पवित्रता आ गई, निर्भयता आ गई, सभ्यता आ गई, सिविलाइड बन गए हम, है ना, अंतर्मुखता आ गई, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, अनासक्त वृत्ति आ गई। देवता अनासक्त वृत्ति वाले होते हैं, आसक्ति आसक्ति वाले होते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति होती नहीं होती उनके अंदर, होते हैं ना, अनासक्त वृत्ति आ गई, उपराम वृत्ति आ गई, एकांतवासी। ये थोड़ा देवता ये कहते हैं तुम इधर आओ भाई, जरा मेरे से बात कर लूं, मैं बोर हो रहा हूं, ऐसे होता है क्या देवता को? होता है ऐसे होता होगा देवता को, चलो मैं उससे मिल लूं जरा, उसको फोन तो नहीं होता वहां पर, तो ऐसा होता है किसी को कभी, चलो मैं आज बोर हो रहे हैं, आज कोई नहीं है, चलो उससे बात करें, थोड़ा सा घूमाए, उससे मिलाए। भले घूमने जाते हैं किंतु स्पेशल ऐसी कुछ फीलिंग होती है क्या? एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, है ना, व्यर्थ से इकोनॉमी, एकमत, एकता, एक रस, सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, है ना, उदारता, मधुरता, आज का जो अव्यक्त इशारा था ना, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान रखकर को सम्मान देना, निमित भाव सबके अंदर होता है, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी, ये देवताओं के 36 गुण है। हर गुण देखो चेक करना चाहिए रोज, मेरे अंदर 36 गुण है। 36 गुण कब बनेंगे? अभी हमको बनना है, जब हम आत्मा परमात्मा से निरंतर सर्व संबंध से कंबाइंड रहेंगे तो क्या होगा? स्वराज्य अधिकारी आत्मा कम बन सकती है, क्योंकि आत्मा के पास 7 गुण है नहीं आज। आत्मा पे ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख है, ना आनंद है, ना आठों शक्तियां हैं। परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है, पावर हाउस है। अगर मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड रहूं तो हम क्या हो जाएं? स्वराज्य अधिकारी हो गए, नहीं? सिंपल की मुश्किल, पर कंबाइंड रहे कैसे? संबंध के आधार पर। सर्व संबंध अगर मैंने बाबा से महसूस किए हैं, सच्ची दिल से महसूस करके एक एक अनुभव की अथॉरिटी बन गया हूं, किसी देहधारी से मुझे कोई संबंध की आवश्यकता ही नहीं है। जो संबंध हमारे दुनिया में थे, मां चाहिए, बाप से महसूस किया है, शिव बाबा से महसूस किया है, ब्रह्मा के द्वारा महसूस किया है, उसको उसका अनुभव किया है, चलते फिरते उठते बैठते जहां काम पड़ा, मां की आवश्यकता पड़ती है वहां उसको यूज किया है, बाप के रूप में यूज किया है, उसको टीचर के रूप में यूज किया है, सतगुरु के रूप में यूज किया है, बंधु बड़ा भाई बड़ी बहन के रूप में यूज किया है, दोस्त के रूप में यूज किया है, साजन के रूप में यूज किया है, सज्जन के रूप में यूज किया है, डॉक्टर के रूप में यूज किया है। या डॉक्टर दुनिया भी डॉक्टर याद आता है, पेट में दर्द हो गया दोस्त वाले डॉक्टर को बुलाओ फोन करके, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, उसको उसको फोन करते हो, इसको फोन करते हो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को फोन करो, हाँ उसको हिसाब किताब होगा तो बताएगा कि भाई उस डॉक्टर से उस तुम्हारा हिसाब किताब है, उसके बच जाओ, है ना। पर पूछना उसको है, लौकिक माँ याद ना आवे, कौन सी माँ याद आवे? पारलौकिक माँ याद आवे, है ना, अलौकिक माँ के द्वारा वो पालना देगा, ऐसे ही बाप वो याद आवे, टीचर वो याद आवे, सतगुरु वो याद आवे, बंधु भाई चाहिए, बहन चाहिए बड़ी वो याद आवे, है ना, दोस्त चाहिए वो याद आवे, उसको यूज करने का अनुभव की अथॉरिटी हर समय। तो हम तब कर्मयोगी बन सकते हैं, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई साथ चाहिए होता है ना, कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। ड्राइविंग करनी है तो भी साथ चाहिए होता है ना, कुछ भी काम करना, ऑफिस में काम करना, खाना बनाना, हर समय साथ। नो संबंध तो मुख्य है ना, नो संबंध के अनुभव की अथॉरिटी, बाकी हर संबंध में बाबा को यूज करने का आना चाहिए, तब हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं ना। तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो फिर साजन के बाद सर्जन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बाबा याद आए, बाबा को यूज करना है, और फिर बच्चा, लास्ट में बच्चा। तो वो हमें, हम उसको कोई हमें, मुझे लौकिक में धोत क्या बोलते हैं उसको, बेटा है बेटी या पोतरा पोतरी, धोतरा धोतरी बाबा कहते हैं ना, तो कोई याद नहीं आना चाहिए मेरा, उससे ही बाबा के साथ खेलना है मुझे, बाबा को बच्चे के रूप में खिलाना है। किंतु बच्चा बच्चे के रूप में बाबा को अनुभव कर सकते हैं, जब आठ संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनो तो लास्ट में बच्चा बन सकते हैं। तो बच्चा सबसे मुश्किल है, बाबा को बच्चा बना के अपनी गोद में खिलाना, बस अपना तन मन धन वारिस से चले जाए, बलिहार हो जाए, वारिस बना दे बाबा को अपना पूरा 100%, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया ऐसा बना दे, तो वो प्रैक्टिकल स्थिति होनी चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था ना, इसी काम के दो बच्चे आलस्य अलविलापन, क्रोध के दो बच्चे सिनिसिज्म, मतलब दूसरों में अवगुण देखना और बदलने की भावना, लोभ के दो बच्चे शक और अनुमान, मोह के दो बच्चे चिंता और भय, और अहंकार के दो बच्चे कौन से हैं, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, है ना। तो ये जो है 10 बच्चे हो गए, नहीं हो गए, और 10 के पर 10-10 और भी हैं, राइट। यही हमारी कमी कमजोरियां हैं, है ना। और मैंने बताया इसका आत्मी, जब आत्म मन स्थिति है, परमात्मा से कंबाइंड है, तो क्या है, आउट, सारे भाग गए, सारे चोर भाग गए, कमी कमजोरियां भाग गई। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का तरीका क्या है, अब मैं आपको सुनाता हूं। अब योग कैसे लगे, विधि कैसे है, मतलब सही बाबा से संबंध की अनुभूति कैसे करें, डॉक्टर्स की, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, मुझे कुछ तकलीफ हो रही तो बाबा को कैसे यूज करना है, हर संबंध से बाप को कैसे यूज करना है। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं अपना पर्सनल। मुझे जब मैं दिल्ली में रहते, मुझे हार्ट का, मैं तो एक हार्ट का ही विशेषज्ञ था, हार्ट में एस्कॉर्ट में था दिल्ली में, तो तब मुझे फील होता था कि लोगों की आर्टरीज बंद हो जाती हैं, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, बाईपास करते हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर दोबारा कई 6 महीने बंद हो जाते हैं, कई 3 महीने में बंद हो जाती हैं, लोगों का पैसे नहीं होते, तो फिर ये भी इनका क्या किया जाए ना, और बीमारी बढ़ती जा रही, 35-40 साल में हार्ट की बीमारी, अभी तो 20-25 साल में हो जाती है। तब ये प्रोग्राम, रिसर्च का प्रोग्राम बना था, और मैं जब यहाँ पर आ गया, फिर वो रिसर्च करने के लिए मैं बाबा ने टच किया, यहाँ पर आओ, तभी मुझे बुलावा भी आ गया यहाँ से कि भी आप यहाँ हो, तो मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ पर आ गया। और यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ, अब 95 अप्रैल 95 में आया, मुझे कोई हार्ट की बीमारी थी नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं बैडमिंटन खेलता था, लॉन टेनिस क्रिकेट खेलता था, यहाँ के भी लॉन टेनिस खेलने जाता था, सारे पहाड़ माउंट आबू के मैंने हमने सब स्केल किए, मतलब जितने भी पहाड़ है ना, बाबा की पहाड़ी भी तो हम रोज जाते थे, मम्मा की पहाड़ी उधर से होते हुए टॉड रॉक, और सारे मतलब जितने भी पहाड़ है ना, सारे मेरे पर्सनली मैंने सब चढ़े भाइयों के साथ, और भाई मधुबन वाले भाइयों के साथ सब यात्राएं की, है ना। तो वो मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, तो नवंबर 96 में मुझे हार्ट की तकलीफ हो गई, छाती में रोज जोर से दर्द हुआ, पसीना आया बहुत जोर से, मैं तो सिर्फ 37 मेरी एज थी उस समय, ओनली 37, है ना, आज से 27 साल पहले की बात है, 28 साल पहले की बात है। तो हार्ट की मतलब वो होगी तकलीफ हो गई, और ईसीजी बहुत खराब हो गई, ईसीजी में नॉर्मल था पहले, बिल्कुल ईसीजी खराब हो गया, और फिर उसके बाद जब मैं सब टेस्ट कराए, देखा, एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी, तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाए, फिर फरवरी में सायरा सो नहीं पाता था, इतनी मेरे को दर्द होती थी, एंजाइना होता था बहुत सीवियर, और हार्ट बीट बहुत इरेगुलर होती थी, बीच बीच में ऐसे नब्ज पकड़ के, नब्ज जाती थी, है ना, चली जाती थी, और सारा मकान, सारा घर, सब कुछ ऐसे कमरा घूम जाता था, सारा मतलब आपको लगता था जैसे सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया, समझ नहीं आती, एकदम बेहोशी जैसी हो जाती थी, साई साई रात में सो नहीं पाता था, पर बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी। मैं फरवरी में 94 में एक कॉन्फ्रेंस थी उदयपुर में, इको के ऊपर, हार्ट का टेस्ट होता है इको कार्डियोग्राफी, तो मैं उसका मतलब फाउंडर मेंबर था, तो मैं वहां पर गया था, तब मैंने कहा कि सर चलो जाते हैं देखते हैं वहां पर, ऐसे जस्ट मैंने कहा जो होना है वो तो होना ही है, कि तो वहां पर मेरा एक यूएसए का फ्रेंड आया हुआ था, तो उसने कहा, मेरे को चेहरा देख के उसने कहा, डॉक्टर गुप्ता क्या हो गया, क्योंकि मैं सारी रात सोता नहीं था, चेहरा अजीब सा हो गया था, नींद नहीं आती थी, क्योंकि तकलीफ होती थी रात में, ज्यादा तकलीफ होती थी, तो उसने मेरे को मैंने बताया कि ऐसे से मुझे होता है, तो उसने कहा लेट मी सी, उसने मेरा इको किया, पर वो इको इसी बीमारी को मतलब कुछ स्पेशलिस्ट था बीमारी के, वो ऐसा था, उसने कहा डॉक्टर को तो आपके तो हार्ट की दीवारें बहुत मोटी मोटी हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गए, जितनी दीवारें होती है मोटी, डबल से भी ज्यादा मोटी हो गई, और हार्ट की पंपिंग पावर 90% हो गई, नॉर्मली 60% होती है। हार्ट हमारा ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे 60% ब्लड को बाहर फेंकता है, 40% अंदर रहता है। मेरा हार्ट 90% ऐसे कर रहा था, निचुड़ जाता था उसमें, इसलिए मुझे हर बीट में धड़कन हमेशा छाती ऐसी रहती, भारी बाजू भारी एकदम, हर समय रहता था। रात में और ज्यादा भारी हो जाता, एकदम जाना बहुत सीवियर ऐसे होता था, और धड़कन इरेगुलर, बीच बीच में धड़कन आई चली गई, फिर आई फिर चली गई, फिर चली गई फिर आई। सोचो ब्रेन में खून नहीं जा रहा तो क्या होगा, बेहोशी भी आएगी, चक्कर भी आएंगे बहुत जोर से, आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। और फिर मैं बाबा को याद करता था, थोड़ी देर शांति मिलती थी, फिर दोबारा शुरू हो जाता, लेट नहीं पाता था सारी रात। तो मैंने ऐसे किया, तो अब मैं मुझसे उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे मेरे सारे वर्ड से मेरे पास पेशेंट आते हैं और इसमें कभी भी डेथ हो सकती है आपकी, है ना, ये बीमारी ऐसी है और इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, और आपको मुश्किल से आज मतलब मेरे अनुभव में 2 साल से ज्यादा कोई जिंदा रहता नहीं ऐसी बीमारी के साथ जो आपकी बीमारी है। मेरी उम्र सिर्फ 38 हुई थी उस समय। तो उसने मुझे बता दिया, रियल में ऐसा मुझे लगता था क्या कभी भी डेथ हो जाएगी। तो मैं आ गया वापस, उन्होंने कहा आप USA में आ जाओ, आपका ऑपरेशन कर देंगे, एक मशीन लगा देंगे ऊपर स्पेशल, वो करंट मारती रहेगी आप, जब कभी हार्ट बीट इरेगुलर होगी ना तो अपने आप ही करंट देगी, शॉक मारेगी। तो पर उसमें एक मुरास अली मारन करके एक थे हेल्थ इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो यूएस में गए थे, यही बीमारी उनको थी, अखबार में वो जाके आई, इसमें उनका ऑपरेशन हुआ वो वाला जो मेरे को कहा जा रहा था, फिर स्पेस में कला, पर आईसीयू में रहे 2 महीने और उसके बाद मर गए, फरवरी में मर गए थे, उन्हीं दिनों के बाद मर गए। तो मैंने सोचा मुझे तो मरना नहीं है, तो फिर मैं आया दादी से, मैंने शेयर किया बड़ी दादी जी से, तो दादी ने कहा मैं गुप्ता जी मैं मोहिनी दीदी को बोल, मोहिनी बहन है ना यूएस में, उनको बोल देती हूँ, कोई बात नहीं ऑपरेशन करा लो, वो तो कुछ वो मर गए कोई बात नहीं, आपका तो ठीक, आप तो ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, आपको मैं भेज देती हूँ यूएसए में ना, और आप चला के ऑपरेशन करा लो। मैंने दादी मैं तो हार्ट का रिसर्च प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ बना था, वो डॉक्टर कलाम साहब के साथ और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, मैं तो वो करने के लिए यहाँ पर आया था, और मुझे हार्ट की बीमारी क्यों, तो मेरे को तो समझ नहीं आती, मतलब मेरे को कोई बीमारी थी नहीं है, वो कैसे गई मुझे। तो बाबा को ज्यादा वहीं पास में बैठी दादी के पास, तो उसने कहा गुल आप जाओ, दादी को गुल कहते थे ना उनको, गुल बाबा से पूछ के आना कि गुप्ता जी को ये हार्ट की बीमारी क्यों हो गई। तो बाबा ने कहा, बाबा नेक्स्ट डे मैसेज मिला, तो बाबा ने कहा बच्चे को अनुभव की अथॉरिटी बना, ये हार्ट का प्रोग्राम करना ना, तो अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए ये हार्ट की बीमारी आई है ना, तो आप बच्चा खूब योग करे ना तो हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर वो अनुभव दूसरे जब प्रोग्राम शुरू होगा ना तो इस उनके काम आएगी। तो मैंने खूब योग करना, बाबा ने बताया नहीं कैसे योग करना है, तो मैंने जैसे बताया पता था ना योग, जैसे करते थे हम लोग, जैसे आप लोग भी करते होंगे, तो मैंने भी शुरू कर दिया मुरली, मतलब जो था ना रोज अमृत वेला, तो कभी मिस ही नहीं किया था जब से योग ज्ञान में आया, मुरली कभी मिस नहीं की थी, और मुरली फिर और अध्ययन करना और सब कुछ करना शुरू कर दिया, और ज्यादा योग करना, 2-2 घंटा बस कमेंट्री लगा के बैठ जाना, योग करते रहना, जैसे भी हम लोग करते ना ऐसे करते, ऊपर जा रहे हैं बाबा के पास गए, नीचे आए, फिर ऐसे किया वैसे किया, उपतीन सूक्ष्म वतन साकारी आकारी निराकारी डील की, वो किया सब अभ्यास किया। 1 महीना बीत गया, तकलीफ वैसी की वैसी रही। दादी के पास फिर गया, तो दादी ने कहा 1 महीने बाद मुझे बताना, दादी तो रोज ही मिलती थी, तो दादी ने कहा गुप्ता जी कैसे लगता है अभी, कम हुई कुछ तकलीफ, बाबा ने कहा था योग का अनुभव करेंगे तो ज्यादा करोगे तो हो जाएगी, तो मैं दादी मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मैं सारी रात सोता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर दादी ने फिर गुलजा दादी को बोला, फिर गुलजा दादी गई, तो बाबा ने बाबा से मैसेज लेके आई, फिर बाबा से मैसेज लेके मैं दादी कमरे में, दादी मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर दादी ने मैसेज तो 4-5 मिनट का ही बताया, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम जैसे योग करते हो ऐसे बाबा ने बताया कभी इसी मुरली में, ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं बताया, बाबा ने तो बताया था बच्चे रिवाइज करो रियलाइज करो, योग माना रिवाइज करो रियलाइज करो, तुम तो विजुलाइज करते हो बैठ के मैं ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा, ये तो बाबा ने कभी नहीं बताया था, कौन सी मुरली में लिखा है। तो बाबा ने कहा उसमें कि बच्चे को बोलो कि वो 69 से लेके और 97 तक की मुरलियां जो अभी तक की मुरलियां उनको लेके उनको एक एक महावाक्य को पढ़े गहराई से, बार बार पढ़े रिवाइज करे, और एक एक महावाक्य को महसूस करे, रियलाइज माने महसूस करे कौन कह रहा है किसको कह रहा है क्यों कह रहा है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है, किस कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? ऑल माइटी अथॉरिटी, सारे विश्व का मालिक, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी कहो ना, सब कुछ, सब कुछ एक ही है वो, सब कुछ डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, सब कुछ वही है, एक्यूरेट है वो बिल्कुल हर चीज है ना उसके, और उसकी डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है ना, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और किसको कह रहा है? उस आत्मा को जिसने उसको सिलेक्ट किया है, उसका रोल है मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा को, जिसके द्वारा उसको हार्ट का प्रोग्राम कराना है, उसको सिलेक्ट किया है ना उसको। दादी मुझे समझा रही थी, मतलब ना समझा रही थी, और क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको, इसको ठीक करके बताना, असंभव को संभव करके दिखाना है, दुनिया के लिए संभव है संभव करके, हार्ट का प्रोजेक्ट भी असंभव को संभव करने की बात है ना, किसके ब्लॉकेज खुल जाना, 100% ब्लॉकेज हो, कैल्सिफाइड हड्डी जैसी ब्लॉकेज हो गई वो खुल जाए, 90% ब्लॉकेज खुल जाए बिना ऑपरेशन के, बिना उसके स्वभाव संस्कार, ये असंभव है वो संभव हो जाना, ये तो कैसे, तो क्यों? इसलिए असंभव को संभव करने के लिए कह रहा है। उस महत्व से तुम मुरली की एक एक लाइन को पढ़ो, है ना, एक एक महावाक्य को पढ़ो और उसको फिर अंदर महसूस करो, ये तीन बातों के साथ, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, और सब मुरलियों को पढ़ो, एक एक लाइन को, एक एक महावाक्य को ध्यान से पढ़ो, और तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और फिर दादी ने मुझे समझाया, फिर इसी पर दादी आधा घंटा मेरे को समझाया, आप गुप्ता जब चपाती खाते हो, चबाते हो तो मीठी लगती है ना, मीठी लगती है तब महसूस होता है, उसके बगैर महसूस होता है क्या? आप दाना मुंह में डालो, गेहूं का दाना मुंह में डालो, 5-6-10 दाने डाल लो मुंह में, उसके क्या, क्या 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 महसूस होगा? महसूस होगा, जब चबाओगे तो महसूस होगा ना, मीठा लगेगा, फिर महसूस होगा मीठा या कैसा भी, कोई चीज कड़वी भी होगी, अगर काली मिर्च को चबाओगे तभी तो महसूस होगी, अगर काली लाल हरी मिर्च भी आप जीभ में रख लो ऐसे ही तो क्या महसूस होगा, चबाएंगे तो महसूस होगा। तो उस जब कोई बाबा के महावाक्य मुरली की, आज की मुरली थी, उसको सच्ची दिल से पहले उसको रिवाइज करो, मतलब एक एक लाइन को, एक एक महावाक्य, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, तो हम जब उसको महसूस करते कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्या कह रहा है, तो हमारे अंदर क्या आने लगता है, प्यार आने लगता है, उसका उसके अंदर से बैठने लगती है बात। आप कोई भी लाइन ले लो बाबा की ना, इसमें से कोई भी लाइन आप ले लो बाबा की ना, किसी भी महावाक्य को ले लो आप, तो क्या होगा, परमात्म प्यार और देदारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है, बाबा कह रहे हैं ना, तो महसूस करो परमात्म प्यार क्या है, देहधारियों का प्यार क्या, अंदर महसूस, जैसे खाना को चबाते हैं ना हम लोग, चपाती चबाओ गेहूं मीठा लगने लगता है ना, तो अंदर से महसूस होने लगता है। बाबा दिन का 5 बार रिवाइज करना, अंदर धीरे धीरे महसूस करना, फिर वो आपको महसूस होगा, और महसूस होगा तो परिवर्तन होगा। तो सच्ची दिल की महसूसता से अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, रियलाइजेशन से एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस से क्या होता है, प्राप्ति होती है, अनुभूति से प्राप्ति होती है, और प्राप्ति से तृप्ति होती है, और तृप्ति होने से क्या होता है, फिर पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन होता है। हार्ट की बीमारी क्यों आई, क्योंकि कोई ना कोई पुराना स्वभाव संस्कार आपका है ऐसा, और मैं बचपन से बहुत सेंसिटिव था, है ना, और जो भी बात होती थी अंदर से गुस्सा बाहर नहीं करता, अंदर फील कर लेता था, है ना, रिजेंटमेंट थी अंदर दबी हुई। और मेरे पिताजी को बाद में पता लगा, उनको भी ये हार्ट की बीमारी थी, उनको भी 35-37 साल में तकलीफ हुई थी यही वाली, पर लोगों ने उसमें पता नहीं था, डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आ गया उनको, तो हमने सारी उम्र बहुत इनसिक्योरिटी में जिए हम, तो हमने जो है उनको बहुत ध्यान से रखा, उनको थोड़ी थोड़ी थी 63 की जीवन की डेथ हो गई, किंतु मेरे को तो मतलब जो मुझे हुआ था वो बचपन से बहुत सेंसिटिव, बहुत स्ट्रेस फेस की थी लाइफ में, तो अंदर अंदर मैं बड़ा भी था परिवार में, तो अंदर अंदर रिजेंटमेंट बहुत बसी हुई थी, कह नहीं पाता था किसी कुछ भी, तो वो अंदर बसी हुई थी। तो बाबा ने कहा था लेटर लिखो, 50 साल की उम्र से जो भी कर्म कहानी कुछ भी फील होता है लिखो, और 10-10 बार लिखो लेटर। तो मैं लेटर लिखता था, फाड़ता था, लेटर फाड़ता था, मतलब लिखा, साइन किया, मेरे मीठे बाबा ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे अंदर में ये बातें लिखा, साइन किया, बाबा को दिया, 000 पे फैक्स कर दिया, बाबा उसमें था ये 000 पे, माना मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, जो भी तुमने लिखा है आज अब जीरो हो गया, खत्म। बाबा को दे दिया, जैसे आज भी है ना, बाबा ने बाबा को दिया तो क्या हुआ, जवाब तुरंत शांति प्यार खुशी शक्ति अंदर आ गई है ना, तो वो अंदर आ गई है ना। तो आप जैसे करो, तो ये तो 90 की मुरली है, शायद बाबा पहले बता चुके होंगे, बाबा ने उसी का मैसेज मुझे दिया, तो फिर जो है मुझे उसने पता नहीं था, मैंने पढ़ी नहीं तब तक, मुरली तो पढ़ी नहीं थी, ये वाली 90 की तो मैंने पढ़ी थी, तो क्योंकि उस समय 97 चल रहा था। तो मैंने देखा, मैंने अभ्यास करना शुरू किया, तीसरे दिन ही मेरे चौथे दिन मेरे को नींद आ गई, 5 महीने के बाद मैं सोया, 5 महीने के बाद सोया। नहीं तो मैं योग करता था, थोड़ा अच्छा लगता था, हार्ट बैट सोने की कोशिश करता, फिर शुरू हो जाता था, हार्ट बीट फिर इरेगुलर हो जाती थी, फिर उठ के बैठ जाता था, सारी रात ऐसे चलता था, ऑक्सीजन लगा लेता था कमरे में, ऑक्सीजन रखी हुई थी अपने आप ही, और फिर और किसी को कहता मेरे को कोई देखने आए, कहते आप ही तो हार्ट के डॉक्टर हो, और कौन देखने आएगा आपको, हमारे पास तो कोई रहा ही नहीं। तो मतलब ये वाली हालत मेरी थी ना। तो एक बाबा को हमेशा यूज करना, डॉक्टर के रूप में यूज करना, मैं किसी को फोन नहीं करता था, कुछ भी हो जाए, और मुझे ये विश्वास था कि नहीं बाबा मुझे कुछ सिखाना चाहता है ना। और 4 दिन के बाद मेरी बीमारी ठीक, नींद आ गई, हार्ट बीट रेगुलर रहने लगी, एंजाइना कम हो गया, एकदम तो ठीक नहीं हुआ, पर धीरे धीरे कम होता चला गया। और जब 6 महीने बाद टेस्ट कराया वापस, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, वही हार्ट वाली, वही यूएस वाला डॉक्टर आया हुआ था वहां पे, वो मेरा जो फ्रेंड था, उसने मेरा इको किया, कहते डॉक्टर गुप्ता व्हाट हैव यू डन, आपने ऑपरेशन कराया क्या? मैंने कुछ भी नहीं कराया। तो कहते आप तो इतने मुस्कुरा रहे हो, आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 65% हो गई, और आपकी दीवारें नॉर्मल हो गई, वापस इतनी मोटी थी, अभी वापस नॉर्मल साइज आ गई, 1 सेंटीमीटर की हो गई। तो कैसे हुआ, कैसे हुआ? अनुभव की अथॉरिटी, इसे बोलते हैं अनुभव की अथॉरिटी है ना। तो योग की विधि ये है, अगर आप स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हो, कमी कमजोरी को दूर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बाबा की साकार मुरली हो चाहे व्यक्त मुरली हो, एक एक लाइन को, एक एक मीठे बच्चे, उसको अर्थ सहित पढ़ो। इसलिए मैंने बताया पवित्र सत्यता, सत्यता पहला दैवी गुण है ना, सातों गुणों के मिश्रण से बनेगा ना, सातों गुणों जब अंदर भरे होंगे ना, परमात्मा से कंबाइंड हो, पावर बैंक होती है ना, पावर बैंक होती है ना, जब मोबाइल के साथ रख दो तो क्या होता है, कंबाइंड एनर्जी आ गई ना, तो आपका मोबाइल पूरा काम करता रहेगा, उसकी बैटरी डिस्चार्ज शुरू नहीं करेगा। तो जब लगातार बाबा से कंबाइंड संबंध से रहोगे, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में शिव शक्ति है ना, या पांडव पति के साथ कंबाइंड रहोगे, तो क्या होगा, जब वो साथ आपका लेजर प्रिंटर नहीं होता, कलर प्रिंटर होता ना, कलर प्रिंटर होता ना, इंकजेट प्रिंटर कहते हैं ना, उसमें 4 ही कलर होते हैं, कौन कौन सा, ब्लू, रेड और येलो और एक ब्लैक होता है, तो चारों से मिलकर कितने कितने सारे कलर, जब चित्र निकालोगे ना आप, कोई चित्र बनाओगे कुछ प्रिंटर, तो कितने कितने सारे कलर निकलेंगे, कितने सारे कलर निकलेंगे उसमें जब प्रिंट कर निकालेंगे, तो डिफरेंट जामुनी भी निकलेगा, डिफरेंट तरह के पिंक भी निकलेगा, हरा भी निकलेगा है ना, सब तरह के रंग निकलेंगे ना। तो ऐसे ही जब 7 एनर्जी आत्मा भरपूर है ना, जब कर्मों में दिखाई देगा, फिर कर्मों में दिखाई देगा, चलन में दिखाई देगा, आंखों से 7 एनर्जी मिलकर क्या, सत्यता दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी है ना, निर्भयता दिखाई देगी, व्यवहार में निर्भयता दिखाई देगी ना, राइट, और सभ्यता दिखाई देगी, एकदम सिविलाइज्ड, एकदम जैसे देहवान है ही नहीं किसी के, देह ना अपने अंदर देहवान है ना उनके अंदर, ये वाली स्थिति ना, और अंतर्मुखता, अंदर का रस आ रहा है, ये देह और देह की दुनिया से डिटैच है, अशरीरी आत्मा है, मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, अनासक्त वृत्ति होगी, इच्छा नहीं होगी कोई भी, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, ऐसे दिखाते ना कभी कभी, नहीं फोटो में सीरियल में दिखाते ना, श्री कृष्ण ऐसे वो विष्णु लेटा हुआ है उसमें, कैसे उसके अंदर 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 वो मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, सब कुछ देख भी रहा है, और साक्षी दृष्टा की अवस्था है कि नहीं है, एकाग्रता, एक नामी है ना, तो ऐसी सरलता, नम्रता, इससे ऑटोमेटिक है। सत्यता माना क्या, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता, ये बाबा की मुरली की डेफिनेशन है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना और व्यवहार में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच भी ना करना, ये सत्यता की परिभाषा है। अपना सत्य स्वरूप कौन सा है, परमधाम वाला और देवी देवता स्वरूप, ये हमारा सत्य स्वरूप है, उसमें स्थित रहना हमेशा। संकल्प जो आज के मुरली में भी था, संकल्प बोल और कर्म, हर कर्म में वो चीज स्थिति हो, है ना, तो वो स्थिति हमारी हो चलते फिरते। पवित्रता क्या है? अपने सत्यता के स्वरूप में रहकर दूसरे का सत्यता वाला स्वरूप इमर्ज करके फिर व्यवहार करना। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, वह संकल्प भी नहीं। ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, निराकारी बनके निराकारी बाप को यहां समा दो और आंखों में ब्रह्मा बाबा को समा दो। ब्रह्माचारी बाप से कंबाइंड निरंतर रहो और ब्रह्मा बाबा, तभी ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हो, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पढ़ने में, हर कर्म करने में, चलने फिरने में, तब बाबा को फॉलो कर सकते हो। नहीं, निर्भयता माना कौन सी, एक आंख किसमें, परम धाम में बाबा के साथ, बाबा के साथ जुड़ी हुई, और दूसरी आंख सत्ययुग में कहां पर, सुखधाम में अपने लक्ष्य पर लगी हुई, श्री कृष्ण पर लगी हुई, अपने सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप पर लगी हुई, वो स्वरूप पर लगी हुई। नहीं तो कौन सी आंख, कौन सी आंख परम धाम में बाप के साथ, और कौन सी आंख श्री कृष्ण के साथ, बताओ कौन सी आंख, कौन बोलेगा, बोलो, राइट वाली लेफ्ट वाली, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ जी, त्रिनेत्री, दिव्य नेत्री, कोई भी बता सकता है। हाँ आप, हम कोई शरीर थोड़े ना, बाबा किसको बोल रहा है, बुद्धि रूपी आंख, बुद्धि हमारा राजयोग बुद्धि हो गया ना, तो बुद्धि रूपी आंख परम धाम में बाबा से जुड़ी रहे, बाबा से कंबाइंड रहे, और मन रूपी आंख कहां लगी रहे, अपने लक्ष्य पर लगी रहे। तो अगर हमें स्वराज्य अधिकारी कमी कमजोरी से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, मंत्र है मन मना भव का, यंत्र है दिव्य बुद्धि, जो आज बाबा ने कहा बुद्धि कैसी होनी चाहिए, केयरफुल और क्लियर, और उसका मेन स्विच कौन सा है बुद्धि का, कौन बताएगा मेन स्विच, वो है सच्ची दिल साफ दिल, दिल सच्ची दिल साफ दिल, सच्ची दिल, ये जो बताया ना केयरफुल, कि दिल में मेरे कौन है, दिल में मेरे बाबा है, अगर दिल में मेरे बाबा, जब एक दिलाराम बाबा कहता है दिलाराम को दिल में बसा लो, कोई बच्चा भी अकेला नहीं रहे, बाबा की आशा है ये, हर बच्चे के दिल में दिलाराम समाया रहे, जिसके दिल में दिलाराम समाया तो वो बच्चा ही बाप के दिलाराम के दिल में बैठ सकता है। क्योंकि अगर मेरे दिल में कोई और है, कोई देहधारी, अपनी देह भी है, देहभान है, देह अभिमान है, देह का संबंध संपर्क वाला कोई देहधारी मेरे दिल में बैठा है, मेरी चेतना में कौन बैठा है, देह के पदार्थ कोई चीज खाने पीने की चीज बैठी है, कोई पैसा प्रॉपर्टी कार मकान बैठा है, या देहभान का स्वभाव संस्कार बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्रोध आता है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी के प्रति आकर्षण है, कोई आलस है, अलबेलापन है, दूसरों में अवगुण देखने की आदत है, बदला लेने की भावना, शक अनुमान है, चिंता भय है, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष है, तो क्या होगा, दिल सच्ची साफ नहीं है, दिल झूठी है ना। और साफ माना श्रीमत के अलावा कोई मनमत परमत ना हो, श्रीमत ही हो सिर्फ, है ना। तो ये मेन स्विच है दिव्य बुद्धि का, डिवाइन इनसाइट का। तब अगर मेरे दिल में सिर्फ बाबा से मेरे सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बना हो तो फिर ऐसा हो सकता है। मां के रूप में शिव बाबा, अभी था ना एक मुरली तीन हफ्ते पहले, संडे की मुरली, ये संडे छोड़ के पिछला संडे, पता आप लास्ट टाइम कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर थी, उसके पहले वाली थी रूहानी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, है ना। तो मां के रूप में बाबा क्या करता है, सबसे पहले गिफ्ट कौन सी देता है, शिव बाबा ब्रह्मा के रूप द्वारा, ब्रह्मा को मां के रूप में हमें दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, है ना, पहले जन्म देते ही दे देता है, ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है, जो एक सेकंड से भी कम समय मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को, हमारा सूक्ष्म शरीर कौन सा है बताओ, सूक्ष्म शरीर अंदर होता है कि बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि बना, अपने आप ही बन जाता है बना, अभी तो हमारे मन बुद्धि संस्कार में क्या भरा हुआ था, देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, तो हमारा सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, स्थूल स्थूल हो गया, स्थूलता बच गई है, अब बुद्धि जो है हमारा दिव्य बुद्धि का इंजन, सूक्ष्म शरीर का इंजन कौन सा है? दिव्य बुद्धि। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर, सारे शरीर में फैला हुआ है वो है, मन है सूक्ष्म शरीर। तो इसको पवित्र मन मना भाव कर दो, दिव्य बुद्धि सच्ची दिल माना, शिव बाबा ही मेरी दिल में है, ABCD बाबा और बाबा का ज्ञान सिर्फ मेरे दिल में है, जो बाबा ने मुरली, बाबा की मुरली मेरे दिल में है ना, जो आज की मुरली में काफी बाबा ने उसमें एम्फेसाइज किया, ये लव लेटर है ना, ये बाबा है मेरी बुद्धि में, और कोई है ही नहीं। आशिक माशिक वाला है, आधा घंटा सुबह शाम नहीं, एक घंटा सुबह शाम मुरली याद नहीं, आशिक माशिक कितने घंटा सुबह शाम याद करते हैं? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, निरंतर ना, निरंतर। और लव लेटर कहां रखते हैं वो है? दिल के पास है ना, कब पढ़ते हैं? देखते कोई नहीं है, ऐसे छुपा के देखेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, और फिर सामने से कोई आए तुरंत छुपा लेंगे, और जितनी देर कोई सामने रहेगा उतनी देर क्या करेंगे? मुझे मेरा आशिक मेरा माशूक मुझे ये बोलता, तुम बहुत सुंदर हो, तुम ऐसे हो, तुम तो देवता, तुम्हारा चेहरा तो इतना सुंदर है, तुम ऐसे हो, नूरे रतन हो, मस्तक मणि हो, जान के नूर हो, बाकी लोग तो बोलते तुम बेकार आदमी हो ना, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल है ही नहीं, बेकार एकदम नॉनसेंस हो तुम, तो उसकी याद आएगी नहीं आएगी? तो हमारा बाबा क्या करता है, तुम तो देवता बनने वाले हो, तुम ऐसे हो, लक्ष्मी नारायण बनोगे, श्री कृष्ण जैसे बनोगे है ना, तुम तो लक्ष्मी, तुम तो दादा बनोगे, तो बाबा मेरा क्या कहता है मेरे को है ना। तो ये नशा हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे लेटर पढ़ने का, कितनी बार पढ़ना, और रोज सोने के पहले लेटर लिखने का। बाबा ने हमको 4 पेज का लेटर दिया, कम से कम 1 पेज का लेटर तो उसको वापस लिखो सोने के पहले, सारी कमी कमजोरी बताओ उसको कि बाबा मेरे अंदर आज भी ये, आपने कहा था ना सुबह मुझसे कमी रह गई, ये मैंने शुरू किया तब से, कितने साल हो गए, 97 से आप कितने साल हो गए, 25 साल, मैंने एक दिन भी लेटर मिस नहीं किया है ना। और मुरली मैं कितनी बार पढ़ता हूँ, कम से कम एक बार 3:30 बजे उठते ही पढ़ता हूँ, और फिर अमृतवेला करके फिर पढ़ता हूँ, 2 बार हो गए, फिर एक बार सुनता हूँ, 3 बार हो गए, 4थी बार क्लास में सुनता हूँ, 5वीं बार वॉकिंग करता हूँ ना तब 1 घंटा, तो फिर मुरली का एक एक लाइन को एक एक जैसे वो बताया ना, रिवाइज और रियलाइज बहुत गहराई से, भले एक ही पेज हो, वरदान स्लोगन पेज, उसको महसूस करो। फिर साधन में मौका, जैसे ही मौका मिलता है ना, जैसे ही मौका लगा, कार में बैठे, नाश्ते की डाइनिंग टेबल बैठे, मुरली जेब में ही रहती है हमेशा, सोते समय मुरली बेड साइड रहती है, एक टॉर्च रहती है, अगर भूकंप भी आ जाए, दब भी जाए, तो कम से कम टॉर्च से यूं तो देख लेंगे ना, नीचे ऐसे बचा रह गया तो नहीं ऐसा। तो मुरलीधर और मुरली दिल में हो ना, तो अपने आप ही दिव्य बुद्धि काम करेगी, और फिर मन मनाभाव हो जाएंगे, फिर कमी कमजोरी रहेगी क्या? कोई कमी रहेगी नहीं, सब भाग जाएगा ना? ओके, सूरज अधिकारी है सदाई, ओम शांत। अभी इसी तरह से मुरली पढ़ना रोज ना, इसी तरह से मुरली, सारी अव्यक्त मुरली निकाल लो रोज की, साकार मुरली और फिर एक अव्यक्त मुरली। देखो मेरी जेब में 2 मुरलियां हैं अभी भी, देखो 2 मुरलियां मेरी जेब में, एक ये वाली, अच्छा आज तो है ये संडे का दिन, एक संडे एक तो 7 दिन रहेगी मेरी जेब में, और फिर एक वो रहेगी रोज की मुरली, तो 2 मुरली रोज रहेंगे। और फिर ये देखो मेरा चार्ट है, घंटे घंटे याद का चार्ट है ना, और इसके आगे एक सफेद पेज है ताकि इसको पता लगे मेरी जेब में क्या है ना, ये सफेद पेज है ना, ठीक है, इसमें मेरा वो वैलेट भी मेरा यही है ना, थोड़े बहुत पैसे हो चाहिए ना, होते 50 रुपये चाहिए हो तो 50 रुपये, कोई आवश्यकता पड़ी तो 50 रुपये भी इसी के अंदर रहते हैं, तो इसी में रहते हैं ना, इसी कागज में रहते हैं ना, तो ऐसे फिर मेरा ये सदा मेरे साथ रहता है ना, तो ऐसे अपने साथ बना के रखो है ना। हमारे दुनिया में कहीं बुद्धि हमारी जाए नहीं, करेंगे ऐसी मुरली को सारा दिन पढ़ो है ना, भले आपको मुरली नहीं मिली तो नोट कर लो कागज, फिर हर समय योग लगेगा, हर समय कर्म, हर कर्म में योग, निरंतर सहज योगी, स्वतः योगी, कौन सा स्नेह संपन्न योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी, हमेशा योग, 24 घंटा श्वासों श्वास योग, यार बाबा की याद चाहिए, ज्ञान चिता पे निरंतर रहेंगे तभी हम योग अग्नि ज्वालामुखी शक्तिशाली योग बीच जागृत होगी और विक्रम विनाश होंगे, तब हम बनेंगे क्या, कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और विक्रमा जीत, फिर कर्मातीत बनेंगे। तब लाइट माइस आउट, लाइट हाउस माइट हाउस बनके कलब ऋषि जड़ में बाप दादा से कंबाइंड है कि अष्टत्वों के साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को और पूरे कलब ऋषि को सत्य त्रेता द्वापर कलयुग की आत्मा को सकाश दे पाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू भाई सर, थैंक यू वेरी मच। हम सब बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, इतनी सुंदर अनुभव की बातें हम सबके साथ शेयर की। देखो भाई साहब कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई, हाँ जितना भाई साहब बिजी रहते हैं आप देखेंगे चैनल पे भी आते हैं, हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देते हैं, ज्ञान योग का भी बैलेंस होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल टिप्स थी उसको हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अभ्यास करेंगे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।